गो।
नमस्कार दोस्तों, आज आपने देखा होगा कि संघ के शिविर में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के जाने को लेकर कांग्रेस और कम्युनिस्टों में बहुत ज़्यादा कोलाहल है। दोनों बहुत ज़्यादा असहज हैं और कह रहे हैं कि डॉक्टर प्रणब मुखर्जी आरएसएस के शिविर में कैसे जा सकती हैं। डॉक्टर प्रणब मुखर्जी को आरएसएस ने 7 जून को नागपुर स्थित संघ मुख्यालय में आमंत्रित किया है। उस दिन संघ के जो तृतीय वर्ग के प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके करीब 500 से 600 स्वयंसेवक हैं, उसे डॉक्टर प्रणब मुखर्जी संबोधित करेंगे। प्रणब मुखर्जी बहुत ही प्रसिद्ध और कर्मठ कांग्रेस लीडर रहे हैं। राष्ट्रपति बनने से पूर्व वो देश के वित्त मंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस की पूरी विचारधारा से वो उनका पूरा जीवन ओतप्रोत रहा है। शायद इसी को लेकर कांग्रेस और कम्युनिस्टों में कोलाहल है। कांग्रेस की तरफ से जो बयान आए हैं वो काफ़ी निंदनीय हैं। कम्युनिस्ट तो अपने निंदनीय बयान के लिए पहले से ही जाने जाते हैं। कांग्रेस और कम्युनिस्टों को मैं बताना चाहूँगा कि वो महात्मा गांधी पर तो हमेशा अपने दावे करते रहे हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी ने। स्वयं महात्मा गांधी भी स्वयं सेवकों को संबोधित कर चुके हैं, तो क्या कांग्रेस अपने आप को महात्मा गांधी से अलग कर लेगी? बात उन दिनों की है जब भारत का विभाजन हुआ। तो सितंबर 1947 की ये घटना है। भारत का विभाजन अगस्त में, जब भारत को आज़ादी मिली, उससे एक दिन पहले पाकिस्तान का निर्माण हो गया था। पंजाब में वहाँ के हिंदुओं और सिखों को मरने के लिए कांग्रेस ने छोड़ दिया था, उन्हें कोई बचाने वाला नहीं था। उस वक्त उनको बचाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक ही सामने आया था। मैं आपको एक रेफरेंस देना चाहूँगा, प्रोफेसर A.N. बाली हैं, उनकी एक किताब है नाउ इट कैन बी टोल्ड। उस किताब में वो लिखते हैं, इस कठिन घड़ी में लोगों की रक्षा के लिए आरएसएस नाम से विख्यात एक निस्वार्थ नौजवानों के संगठन के अतिरिक्त और कौन आया था। उन्होंने प्रांत के प्रत्येक नगर के प्रत्येक मोहल्ले में हिंदू व सिख महिलाओं एवं बच्चों को संकटपूर्ण क्षेत्रों से निकालकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने का प्रबंध किया था। उनके लिए खाने पीने, चिकित्सा सहायता और कपड़ों की व्यवस्था की तथा सभी प्रकार से उनकी देखभाल की। विभिन्न नगरों में उन्होंने अग्निशामक दल बनाए, भागते हुए हिंदुओं और सिखों को ढोने के लिए बसों और लॉरियों का प्रबंध किया तथा रेलगाड़ियों पर सुरक्षा दल तैनात किए। विभिन्न हिंदू तथा सिख बस्तियों में रात दिन कड़ा पहरा लगाया ताकि उन्हें कोई मार ना सके, उनके साथ कोई लूट ना कर सके, उनके साथ किसी तरह के नृशंस व्यवहार को कोई अंजाम ना दे सके। लोगों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया। वे सबसे पहले उन पीड़ित जनों की सहायता के लिए उनके पास पहुँचे और सबके बाद में वे पूर्वी पंजाब के सुरक्षित क्षेत्रों की ओर गए। मैं, लेखक लिखते हैं बाली, मैं पंजाब के अनेक जिलों के जाने माने कांग्रेसी नेताओं के नाम गिना सकता हूँ जिन्होंने अपने व अपने कुटुंबियों की रक्षा के लिए खुलेआम आरएसएस की सहायता ली थी। तो राहुल गांधी की पार्टी, शीला दीक्षित का जो के जो बेटे हैं संदीप दीक्षित, जो आज प्रणब मुखर्जी पर हमला कर रहे हैं, उनकी पार्टी, उनके नेताओं ने अपने बीवी बच्चों, अपने जान माल की रक्षा के लिए आरएसएस की सहायता ली थी। क्या अभी भी उन्हें आरएसएस से नफरत करना चाहिए। उन्होंने सहायता को किसी भी पुकार से अनसुना नहीं किया, आरएसएस ने तब अनसुना नहीं किया था, तो क्या आज आरएसएस अगर डॉक्टर प्रणब मुखर्जी को अपने शिविर में बुला रही है तो क्या प्रणब मुखर्जी को अनसुना करना चाहिए? ऐसा भी हुआ, संघ के लोगों ने मुस्लिम महिलाओं और बच्चों को हिंदू मोहल्लों से निकालकर लाहौर के मुस्लिम लीग के शरणार्थी शिविरों में पहुंचाया था। जो राहुल गांधी संघ को लेकर इतना विषमावन करते हैं, इतना नफरत जाहिर करते हैं, उन राहुल गांधी को ये पता चलना चाहिए कि संघ ने ना सिर्फ कांग्रेस के नेताओं, उनके बीवी बच्चों को बचाया, बल्कि कई सारी मुस्लिम महिलाओं और बच्चों को भी हिंदू इलाके से सुरक्षित निकालकर उनको मुस्लिम लीग के शरणार्थी शिविर में पहुंचाया था। प्रोफेसर बाली आगे लिखते हैं, जब समूचा पंजाब जल रहा था और कांग्रेसी नेता असहाय होकर दिल्ली में पड़े थे, दिल्ली सत्ता का केंद्र, सत्ता उन्हें मिल चुका था कांग्रेस को, इसलिए सारे नेता असहाय होकर दिल्ली में पड़े थे, तब आरएसएस के लोगों ने अनुशासन, उनकी शारीरिक क्षमता और अपने को जोखिम में डालकर भी कार्य करने की उनकी निस्वार्थ भावना ने पंजाब के लोगों को बचाया। यदि पंजाब से बाहर का कोई व्यक्ति पंजाब के हिंदुओं व सिखों से कहे कि वे सिखों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के उन कर्मवीरों को भुला दे जिन्होंने अपने प्राणों पर खेलकर उनकी रक्षा की थी, तो उनका यह आलाप अनसुना ही किया जाएगा। तो आज संदीप दीक्षित, सीताराम येचुरी, राहुल गांधी का आलाप अनसुना ही किया जाए। मैं एक और रेफरेंस देता हूं आपको, एक किताब है मुसलमान और शरणार्थी। इस किताब में जो है सरदार पटेल के पत्रों का संकलन है। इस पत्र में तत्कालीन रक्षा मंत्री बलदेव सिंह ने, जो सरदार पटेल, उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल को, गृह मंत्री सरदार पटेल को जो पत्र लिखा था, जरा उसकी एक लाइन मैं आपको पढ़ के सुनाऊं। हमने पंजाब में होने वाली घटनाओं तथा अत्यधिक नुकसान का पूरी तरह से मूल्यांकन नहीं किया है, जिसके लिए पाकिस्तान के लोग और सरकार हमें कष्ट पहुंचा रहे हैं। वो लिखते हैं बलदेव सिंह जो है, कि बलदेव सिंह इस पत्र में है 6 अक्टूबर 1947 को रक्षा मंत्री बलदेव सिंह द्वारा सरदार पटेल को पत्र लिखा गया था। इस पत्र में बलदेव सिंह ने सरदार को सूचित किया कि पश्चिमी पंजाब, जो आज पाकिस्तान है, के अधिकांश गांव व कस्बों में हिंदू लड़कियों को जबरन उठाकर रखा गया है। इन लड़कियों को छुड़ाने के लिए, मैं चाहूँगा पाठक इसको ध्यान से सुने, इन लड़कियों को छुड़ाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और गुरु गोलवलकर से परामर्श करने और सहायता मांगने की जरूरत है। वो ये बात साफ साफ लिखते हैं। वो लिखते हैं कि जहां तक बलात् लड़कियां अपहृत करने का प्रश्न है, पश्चिमी पंजाब में ऐसा एक भी गांव या कस्बा नहीं है जो इस समस्या से अछूता हो। बड़ी संख्या में औरतों को जबरन उठाकर रखा गया है। ये उस समय के गृह मंत्री, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं बलदेव सिंह, वो लिखते हैं ऐसे समय में जब संघ के निस्वार्थ कार्य को और जब कांग्रेस के सारे नेता दिल्ली में बैठे थे, तो हिंदू और सिखों और मुस्लिम महिलाओं की भी रक्षा की सूचना महात्मा गांधी तक पहुंची। सितंबर 1947 में महात्मा गांधी ने गुरु गोलवलकर से, जो उस समय संघ के प्रमुख थे जैसे आज मोहन भागवत जी हैं, उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने गांधी जी को, एक तपस्वी हैं, उनकी एक किताब है राष्ट्राय नमः, उसमें वो लिखते हैं, गांधी जी को भली भांति पता था कि संघ की शक्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उसका देश प्रेम अटूट है। इससे पूर्व 1946 में जब गांधी जी दिल्ली की भंगी कॉलोनी में ठहरे थे, तब एक रात मुस्लिम गुंडों ने बड़ी संख्या में उस स्थान को घेर लिया और उन पर भद्दी गालियों की बौछार कर दी। इसके बाद संघ के स्वयंसेवक गांधी जी के निवास स्थान पर रात रात भर पहरा देने लगे और कई सप्ताह तक उनकी रखवाली करते रहे। जब गुरु जी को अर्थात गुरु गोलवलकर को गांधी जी की इच्छा की जानकारी मिली कि वो उनसे भेंट करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने उनसे भंगी कॉलोनी के खुले स्थान में 500 स्वयंसेवकों को संबोधित करने के लिए अनुरोध किया गुरु गोलवलकर ने गांधी जी से। और अगले दिन इसी कम्युनिस्ट जो सीताराम येचुरी आज विरोध कर रहे हैं, उसी कम्युनिस्ट विचारधारा के अखबार द हिंदू ने लिखा, महात्मा गांधी के उस भाषण को पूरी तरह से प्रकाशित किया था और उसमें लिखा था, वर्षों पूर्व जब संघ संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जीवित थे, गांधी जी ने संघ शिविर देखा था। अर्थात गांधी जी तब से संघ शिविर देख रहे थे, गए थे वे। उनका अनुशासन, उनकी कठोर सादगी और अस्पृश्यता से सर्वथा मुक्त उनका आचरण देखकर गदगद हो उठे थे। उसके बाद तो संघ फलता फूलता ही गया। महात्मा गांधी ने विश्वास व्यक्त किया कि जो भी संगठन इस प्रकार की सेवा और त्याग के उच्चादर्श से अनुप्रमाणित होगा, उसकी शक्ति तो दिनों दिन बढ़ती ही जाएगी। और आज संघ की शक्ति दिनों दिन महात्मा गांधी के उसी कथनानुसार बढ़ती चली गई है। और संघ के से ही आए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। और जो लोग अलाप कर रहे हैं वो सिकुड़ते चले जाएंगे। कम्युनिस्ट सिकुड़ कर आज सिर्फ केरल तक रह गए हैं, कांग्रेस सिकुड़ कर आज 44 पे आ गई है। इसके बावजूद राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस, सीताराम येचुरी और उनकी कम्युनिस्ट पार्टी नहीं समझना चाहते हैं, तो एक ही बात कहना होगा, मूढ़ों को आप कब तक दिमाग देंगे। आज बस इतना ही। हम आपके साथ रेडियो के जरिए भी, ऑडियो के जरिए भी संवाद जारी रखेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में, इतिहास, प्रेरक चीज़ें, प्रेरक व्यक्तित्व और वो तथ्य जो छुपे हुए हैं बताने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का सहयोग हमें लगातार मिल रहा है, आपके डोनेशंस हमें लगातार मिल रहे हैं, हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और उम्मीद करते हैं आप अपना सहयोग इसी तरह बनाए रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।